मत्र स्वरूपम् रूपम् तस्याग्रजपुरे परमाथुरीं गोष्ठवाटीं राधाकुण्डं गिरिवरमहो राधिका माधवासां प्राप्तो जस्य पथित कृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमो अंगश्यामलिं छटाभिरमित मन्दे कृतेन्दीवरं जड्डं जागुडरोचि संविदधतं पट्टम्बरस्य श्रिया वृन्दारण्यनिवासिनं हृदिलशब्दामाभिरामोदरं राधास्कन्दनिवेशितो जलभुजं ध्यायेम दामु भक्त्या विहीनाय अपराधलक्षै चित्त्वास्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयीं त्वां शरणं प्रपन्ना वन्दे नमस्ते चरणा
श्री गुरु गौरांग गांधारिका गिरधारी श्री राधा विनोद बिहारी जी की असीम कृपा से हम लोगों का एक महीने का ऊर्ज व्रत कार्तिक व्रत दामोदर व्रत और क्या चातुर्मास्य व्रत सब आज निर्विघ्न परिपूर्ण हुआ। गिरिराज जी के चरण में रहने से कोई भी विघ्न बाधा नहीं हुई और करीब करीब 1500 लोग परिक्रमा कर रहे हैं, जिसमें स्थानीय भी हैं, विदेशी भी हैं, देशी भी हैं, सभी लोग हैं। इसमें पंडा जी ने हम लोगों को 15 दिन तक यहाँ दर्शन इत्यादि कराया, इसलिए मैं सबकी ओर से जितने हमारे यात्री हैं फ्रॉम ऑल फॉर ऑल आई एम गिविंग ऑनर सबको के तरफ से मैं अपने पंडा जी को विशेष विशेष धन्यवाद और आदर प्रदान करता हूँ जो 15 दिन तक यहाँ पर हम लोग सुख से चैन से बैठकर निर्विघ्न ये व्रत का समापन किया। आप प्रसन्न रहें,
ये बहुत आशीर्वाद है, बस
इनको बहुत ही संतोषी है। हमारे पंडों में एक सबसे अच्छे हैं और हमको पिता जैसा भी मानते हैं और मैं भी इनको अपना पुत्र जानता हूँ। पंडा इत्यादि का संबंध जैसे है
तो लाख है करोड़ है
ठीक।
ऐसा मत समझना कि हमारा ये नियम सेवा खत्म हो गया, ये चालू करने के लिए जे ऐसा ही 3 महीने तक ऐसा हो और 3 महीने के बाद में एक और चाबी ऐठी जाएगी नवदीप धाम में। मैं सब लोगों को निमंत्रण करता हूँ, नवदीप में सभी पधारेंगे। हाँ, डोंट थिंक दैट अवर नियम रूल एंड रेगुलेशन दैट वी फॉलोड फॉर 4 मंथ एंड 1 मंथ स्पेशली इट इज स्टॉप्ड। We have given some
winding.
That is, you should go on, especially for 4 months. And after 4 months, another winding will be given in Navadvip Dham. So I am
inviting
all. Also, not you only. Go to your countries, everywhere, and bring more 10 each person. I want the at least 15,000 to 20,000 devotees to come and do parikrama in Navadvip. Don't fear. Oh, where is place? Dham ichin mein. When you go, it will
expand.
And when you return back, then again. So don't fear. As much as devotees will come, we will be very happy. तो देखो हमने निमंत्रण कर दिया वहां पर जरूर जाना है ना जरूर ठीक अब हम लोग कहां गया अराशाध्यायी का पांचाध्यायी का हम लोगों ने आरंभ किया था मधुरे न समापयेत उधर में हमारा दामोदर अष्टक पूरा हुआ और फिर माधुर्य कादंबनी हमने ली और माधुर्य कादंबनी भी मधुर रूप में कल समाप्त कर दिया और इधर में प्रेम संपुट दामोदर अष्टक प्रेम संपुट हुआ और श्रीमद् भागवत का उठाया सवेरे तो सवेरे हम लोग कृष्ण लीला का ब्रजलीला आरंभ किया और आज हम लोग अंत तक थोड़े से में पहुंचाएंगे संक्षेप में तो रासलीला तक हम लोग पहुंचे हैं अब इसके बाद में गोपी गीत हाँ वही रास पंचाध्यायी गोपी गीत और इसके बाद में फिर आएगा उद्धव संदेश संवाद संदेश उद्धव संदेश आएगा और फिर उद्धव जी की प्रार्थना आएगी ब्रज में जाएंगे और उसके मधुर भावों को गोपियों के ब्रजवासियों के भावों को देख करके उनका अभिमान दूर हो जाएगा मैं इनको नहीं समझा सकता जब तक कृष्ण नहीं आएंगे इत्यादि का वर्णन हम लोग संक्षेप में करेंगे और इसके बाद में आज व्रत समापन का दिवस होगा जैसा कि बतलाए हैं इसके बाद में जो जो मुंडन कराना चाहते हैं सन्यासी ब्रह्मचारी तो जरूर कराएंगे ही गृहस्थ भक्त भी अपना जैसा कराते हैं अपना मुंडन हो और या वो करें मुंडन माने क्या मुंडन माने क्या ये सब मुंडन करना ना हमारे समाज से मुंडन माने हमारे जितने अनर्थ हैं पाप हैं अपराध हैं इन सब का मुंडन करके फेंको हाँ इनको बस आज से सब केश के रूप में शरीर के पाप होते हैं शरीर के मैल सब इन सब के रूप में नख के रूप में और केश के रूप में रोम के रूप में होते हैं इसलिए हमारी व्यवस्था की गई है आजकल के लोग मूर्ख लोग नहीं समझते इस सब का पालन नहीं करते किंतु सचमुच में पहले हमारे यहाँ जन्म संस्कार फिर मुंडन संस्कार फिर यज्ञोपवीत संस्कार फिर विवाह संस्कार फिर माता पिता का या और किसी का साध सब में मुंडन होता था आजकल किसी तरह से वो लोग मुंडन नहीं कराना चाहते ऑफिस में जाना है नौकरी करना है इसलिए नहीं कराते किंतु होना चाहिए उचित है आप लोग कराएंगे ये सब पाप जितने हैं सबको दूर करने के लिए अपराधों को दूर करने के लिए फिर से अपराध अनर्थ ना आए, इसके लिए ये करना चाहिए। तो गृहस्थ भक्त भी जो जो लोग जैसा जैसा कराना चाहते हैं अपना कराएंगे, नहीं होगा तो अपना और मुंडन जैसा बाल छोटे छोटे करा लेंगे। क्या कि बोलो तुम दाढ़ी ना ना दाढ़ी बोलो ना के बोल छे ओ बोल
How can we ladies shave off our
nose? You have some concession, ladies.
Concession.
बस मालपुआ कचौड़ी और ये सब दे करके और उनको भोग लगा दो, सब कुछ नहीं करना, हाल में भर भर करके उनको दो और उनसे फेंकना तो हम लोगों को ले आओ, ब्रह्मचारी सन्यासी हम लोग खाएंगे। तुम्हारा मुंडन करवा दी उमा तो आज ही अभी करा ले।
Was completely in a way where there were no obstacles, there was no disturbance at all. Sometimes in 1500 or so, the devotees were performing parikram with us. So don't think now I've finished my performance of bhajan, now I can go and sleep. No. This is like a recharge. My guru used to say, turn the key, get a recharge, and the next recharge is given in another week. So all are invited there. So we should finish quickly. So if this month we completed prayer at some point, Siddhartha Rastakam, and last night in a very sweet way we finished Madhurya Kanabini, and now in the morning we finished Srimad Bhagavatam, and today we'll try to complete the Rasa Panchadhyaya. So in this comes the Gopi Geet, Uddhav Sandesh, and Uddhav's prayers to the Gopis, where he said, I cannot understand the Gopis, let me return back to Krishna. On this day, of course, all brahmacharis and sannyasis should shave their heads and cut their nails. This is called mundan. These days, people don't like to perform mundan because they think, how I can shave my head if I'm going to the office tomorrow. Therefore, all should do, even grihasthas, according to their ability and their faith, they should also do. What is mundan, or shaving the head? Guru said, I think that all the sins and offenses and aparaj and the nasas that we have in our body comes out of the form of our hair and our nails. Therefore, by cutting out, we're becoming free from all those things. Therefore, we used to see in our previous society, at the time of birth, at the time of yagyavavit, at the time of marriage, at the time of funeral, and all these religious occasions, people would shave their head for that reason. So there was some concession for ladies, so they cannot shave their heads, so they can feed the brahmacharis and sannyasis many different types of foodstuffs, their sins will be destroyed like that.
Madhuraya gira, balgu bakkaya, budhamano gaya, puskare kshana, vidhakari imang bhira mohiyati, adharasi dhuna payasvana. बन महाराज बोलेगा तो बोलो तुम,
आपने बोलो
महाराज, बोलो तुम, ना ना बोलो जो पीछे ये मधुर है या गिरा। हे कमलनयन, तुम्हारी वाणी कैसी मधुर है और द्वार्थक है, मोह को पैदा करने वाली है और उसका एक एक पद मथुरा या गिरा बलगु वाक्य, बलगु मान में परिहास्य युक्त, तरह तरह के अर्थ होंगे और बहुत ही मधुर सुंदर बुध मनोज्ञा एक एक शब्द एक एक पद एक एक अक्षर सब कुछ मधुर बड़े बड़े विद्वान लोग भी रम जाते हैं सर्वस्व बुध मनोज्ञा बड़े बड़े विद्वान लोग भी मुग्ध हो जाते हैं पुष्कर क्षण उस पर सब कुछ न्योछावण कर देते हैं तुम्हारी उस वाणी का रसा स्वादन करके तुम्हारी अज्ञाकारिणी दासियां हम मोहित हो रहे बुलाया और फिर क्या किया घर में जाओ अपने पतियों की सेवा करो फिर कृष्ण पूछ देंगे जैसे मैंने कब कहा जे जाओ मैंने तो नहीं कहा तो आप ही ने तो कहा घोर अंधकार है निर्जन है पतियों को सेवा करना चाहिए मैंने तो ये नहीं कहा मैंने तो अघोर कहा अघोर
अघोर रूपम रजनी
चांदनी रात थी और हजारों करोड़ों गोपियां थी निर्जन स्थान भी नहीं और पशु पक्षी रहते हैं भयंकर यहाँ पर तो मृग रहते हैं हिरण रहते हैं गौवें रहती हैं मैंने तो ऐसा नहीं कहा इस तरह से आपकी वाणी को सुन करके हम मोहित हो रहे हैं हे दानवी अपना अधर अमृत हमें बता तव कथामृतम तप्त जीवनम कविरीडितम कल्म शापहम श्रवण मंगलम श्रीमद आततम भूल गृणंति ते भूल जाए तब कथा में बोलो तो देखे खूब लंबा मत कर
श्रवण मंगलम श्रीमदादतम भूवि गणति के भूविदा जना गोपियां जमुना जी के तट पर बैठी हुई है और कीर्तन कर रही है कीर्तन के माध्यम से अपने हृदय के भावों को व्यक्त कर रही है गुरु महाराज जी ने कल ही बताया कि प्रत्येक श्लोक के दो भाव हैं दो पक्षीय भाव हैं पहला भाव उसका है आपकी कथा कैसी है अमृत के समान है तप्त जीवनम तपे हुए जीवन को शांति प्रदान करने वाली है अमृत पीकर जैसे शांत हो जाता कथामृत पीकर हे श्याम सुंदर आपके जीवन में हम लोग आपकी कथा श्रवण करके जैसे तैसे जीवन को धारण कर रहे हैं अमृत पी रहे हैं आपकी कथा कैसी है अमृत के समान है तब कथामृतम तब जीवनम कभी भी नीडितम नीडितम माने लिखा है कवियों ने लिखा है क्या लिखा है जो कृष्ण कथा को सुनता है कभी विरीडितम कर्म शापम कभी विद्वान लोग लिखे हैं जो कृष्ण कथा सुनते हैं उनके सारे कर्मश पाप अपराध अनर्थ भक्ति के जितने भी प्रतिकूल वस्तु हैं भक्ति में जो भी कुछ बाधा नहीं है सब की बाधाओं को दूर करने का एकमात्र अचूक औषधि भगवत कथा है, कृष्ण कथा है, कभी कभी विक्रम कंसा हम ऐसा कभी लोग वर्णन करते हैं। श्रवण मंगलम सुनने नहीं जीव मात्र का कल्याण है कथा। श्रवण मंगलम श्री पदार्थम कंदावली पक्ष की गोपियां कह रही है सखियों कृष्ण कथा सुनकर श्री माने शोभा संपत्ति को प्रदान करने वाली है कृष्ण कथा। श्री मदादिकम भूमि ग्रंथि से भूमिका देना जो ऐसी कथाओं को वितरण करता है उसके समान कोई परोपकारी उपकारी नहीं है। यह तो साधारण शब्द का अर्थ आपको बताया, परंतु श्री कृष्णनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी इसका वर्णन कर रहे हैं श्लेष अर्थ में आपका प्रश्लेषण करके इस श्लोक का। तम कथामृतम राधा जी का ये मूल भाव है, राधा जी पक्षी की गोपियां कह रही हैं, हे श्याम सुंदर आपकी कथा कैसी है। चंद्रावली जी कहती है अमृत के समान है, राधा पक्षी गोपी कहती है मृतम, कृष्ण की कथा मृत अर्थात मारने वाली है। हे प्यारे आपकी जब से हमें कथा नहीं सुनी तब तो हम ठीक से घर में रहते थे, परंतु जिस दिन से हमारी कथा आपकी कथा इन कानों में गई है ना तो हमको आपके मिलन में सुख मिलता है और ना विरह में मिलता है, ना हम ठीक से खा पाते हैं ना सो पाते हैं, हर समय आपके ही चिंतन में हमारा हृदय मन जलता रहता है, इसलिए आपकी कथा कैसी है मारने वाली है। तब कथा मृतम तप्त जीवनम ये शांत जीवन को तप्त करने वाली है। आप लोग उदाहरण देख लीजिएगा श्री गुरु महाराज जी जाते हैं सब जगह पूरे भारत वर्ष में पूरे वर्ल्ड में पूरे विश्व में जाते हैं कथा करने के लिए। आज लोग हम लोग कैसे जब तक कथा नहीं सुनी थी घर बार में कैसे सुख शांति से रहते थे, लेकिन जब से कथा सुनी हर बार बार सब छोड़ छाड़ कर कैसे हम लोग महाराज जी के पीछे पीछे घूम रहे हैं, ना ठंड देख रहे ना जा ना कोई सुविधा देख रहे, बस कथा के पीछे घूम रहे हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य जब जो कोई जिसके कान में एक बार कथा चली जाती है वो उसका जीवन शांतमय जीवन तप को उठता है। इसी भाव को श्री विश्वानंद ने भ्रमर गीत में कहती है यद अनुसरित लीला कर्ण पीयूष अशेषी चेता, हे भ्रमर तू जानता नहीं एक बार जिसके कान में बाई चांस भी कृष्ण कथा चली जाती है उसका क्या होता है, विनष्टा द्वंद धर्म उसके द्वंद धर्म नष्ट हो जाते हैं, नष्ट नहीं विनष्ट विशेष रूप से नष्ट हो जाते हैं। और फिर जब द्वंद धर्म नष्ट होता है तो क्या करेगा वो भिक्षुक चर्या चरंती से भिक्षुक की तरह से द्वार द्वार पर कहीं ब्रजवासी मैया के दरवाजा खटखटाया मैया राधे राधे, मैया ने जो कुछ दे दिया फुर्सत नहीं बैठ कर खाने की चलते चलते फिर राधे ब्रज देवी के चलते हे नंद सुनो पुता अर्थात श्याम सुंदर का गोपियों का स्मरण करते हुए खा चलते चलते खा लेता है। जमुना जी के जल गोपी का दिन रात तड़प तड़प कर भजन करता है, कौन करता है जिसके कान में एक बार कथा गई है। हम लोगों की ऐसी स्थिति नहीं है तो इसका मतलब अभी वास्तव रूप में जिस रूप में कथा हमारे कान में प्रवेश होनी चाहिए वैसे प्रवेश नहीं हुई है। तब कथा और भिक्षुक चल रहा है चरंती से या तो वो भिक्षुक की तरह हो जाता है अथवा विहंगा जैसे माने पक्षी कहीं खाते हैं कहीं सोते हैं कहीं रह बसेरा करके अपने जीवन यापन कर लेते हैं, ऐसे ही प्रेमी भक्त कहीं तो कुछ मिल गया तो मुट्ठी चना कभी वो भी मना मिल गया तो ठीक नहीं मिला तो नहीं, दिन रात अपने प्रिया प्रीतम के मिलन के चिंतन में लगे रहते हैं। तो राधा जी कहती हैं हे सखी चंद्रावली को जाने माथो खराब कह रहे हो है सो कह रही है कि तपे हुए जीवन तपे हुए जीवन को शांति देने वाली है, नहीं नहीं शांत जीवन को तप्त करने वाली है। तब कथा में तब तप्त जीवन ईडितम माने लिखना कभी कभी तो कपोल कपड़ा के कुछ भी लिख सकते हैं, कह सकते हैं कि आकाश में फूल खिलता है, अरे आकाश में कोई फूल खिलता है क्या, कहा है उन्होंने कि कभी हमने लिखा है कि कन्वर्ट दूर हो जाते हैं, यहाँ तक मैंने कहा कि कन्वर्ट का भाव विरह नहीं है। अरे कृष्ण कथा सुनने से और विरह बढ़ जाता है सखी। अगर प्रमाण देखना चाहते हैं तो हम है इसके ज्वलंत प्रमाण, और किसी की देखने की आवश्यकता नहीं है। तब कथा में तब तक जीवन कभी विवेकम कर्म शापम श्रवण मंगलम। चंद्रावली की कहती है श्रवण मंगलम और राधा जी कहती है श्रवण अमंगलम। पहले इसको श्लेष में वर्णन किया जा रहा है, अर्थात कृष्ण कथा सुनने से ही अमंगल होता है। कैसे अमंगल होता है इस भाव को आप लोग हम लोग नहीं समझ पाएंगे, जिस पर गुरु जी की और वैष्णव के विशेषकर महाभाव स्वरूप विश्वानंद जी की और श्री कलयुग पावनकारी सचिन नंदन गौधनी की जिस पर कृपा होगी वही समझ सकता है कि यह अमंगलम। ये कृष्ण कथा कैसी अमंगल होती है, पहले मंगलदायक होती है, जैसे जैसे भक्ति की भक्ति में स्थिति उसी बढ़ती चली जाती है वही अमंगल होने लगती है। इसका बहुत सुंदर भाव महाराज जी के चरणों में बैठ के सुना था, गंभीरा में महाप्रभु कैसे इस भाव का आस्वादन करते थे, विशेषकर राजपंचक रथ यात्रा के समय में इसी श्लोक के माध्यम से प्रताप रुद्र राजा पर कृपा की।
और संक्षेप में
देखो तो हम लोगों को रात्रि की मध्य रात्रि का समय है, ना हमारा घर है ना बाहर है, रोते रोते आँखों का आँख खाली पड़ गई है, शरीर सूख गया है, अर्थात ये कृष्ण कथा शोभा संपत्ति को काटने वाली है। और श्रवण श्री पदार्थम भूमि ग्रंथि के भूमिका जना चंद्रावली जी की पक्ष की गोपियां कहती है कि जो ऐसी कथाओं को वितरण करता है वो सबसे बड़ा परोपकारी है। श्री किशोर जी कहती है ऐसी कथाओं को जो वितरण करता है वो सबसे बड़ा शिकारी है, परोपकारी नहीं है सबसे बड़ा शिकारी है। अर्थात आप तो खुद तो अपने घर में घर वालों को रुलाकर झुलाकर आता है और द्वार द्वार पर सबको रुलाने के लिए कृष्ण कथा को वितरण करता है। बगल में कोठी वाले कहते हैं भैया कथा सुन लीजिए, हम तुमसे कुछ लेंगे नहीं, तुलसी का पत्ता दे देना बस कथा सुन लो। अर्थात स्वयं तो कृष्ण प्रेम में डूब कर वह आस्वादन लेता है और दूसरों को भी इस कथा का रस आस्वादन कराता है। इससे बढ़कर कोई परोपकारी नहीं, श्री किशोर जी का कोई शिकारी नहीं। कैसे शिकारी है गुरु जी की चरणों में पाठ के सुन रहे हैं।
इस प्रकार गोपियां प्रार्थना करते हुई और उलाहना भी देती हुई ऐसी प्रार्थना की जो कृष्ण अपने को गुप्त नहीं रख सके। वे जब सुस्वर से रोदन करने लगी कृष्ण की दर्शन की लालसा से तो तासाम आविर्भूत सौरी स्मयमान मुखाम बुजा उस समय गोपियों के भी गले में पर लगा दिया, बड़े लज्जित होते हुए मैंने इन लोगों के साथ में कुछ रूखा व्यवहार किया। इस प्रकार से उनके बीच में प्रकटित हुए और तब गोपियां को इनके हाथों को अपने हाथ में ले लिया, कोई इस हाथ को लिया, कोई चरणों को लिया और कोई उनके तांबूल को मुख से निकाल करके ग्रहण किया और कोई दूर में खड़ी होकर अपने नैनों के बाण से उनको विद्ध करने लगी और फिर उनसे पूछा प्रीति जो करते हैं उनके बदले में कोई कोई प्रीति करते हैं, जो प्रीति नहीं करते उनसे भी कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रीति करते हैं, और फिर कुछ ऐसे हैं जो प्रीति करो और ना करो, वो किसी से नहीं करते। आप कृपा करके बतलाइए कि उनमें से आप कौन से हैं। कृष्ण ने कहा जी गोपियों मैं इनमें से कोई भी नहीं। अच्छा कोई भी नहीं है तो नहीं, प्रीति के बदले जो प्रीति करता है वो बनिया है, मैं ऐसा नहीं। जो प्रीति करे और ना करे उस पर प्रीति करते हैं, मैं इनमें से नहीं हूं। ये तो माता पिता गुरु कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। हाँ हे सुमध्यमान ये लोग तुम हो सकती हो। और तीसरा, कोई प्रीति करे और ना करे, आत्मा राम आत्मकाम गुरुद्रोही अकृतज्ञ और अंत में गुरुद्रोही। मैं आत्मकाम नहीं, मेरी सब कामनाएं पूरी होती तो तुमको बुलाता, तुम्हारे साथ में राज करता, फिर तुमको बुलाया, तुम्हारे सामने प्रकट हो गया। और आत्मा राम, आत्मा में ही रमण करने वाला हूं, तो वैसे नहीं दूसरे रूप में, मेरी तो आत्मा श्रीमती राधिका जी है, उसमें मैं रमण करता हूं, तो मैं रमण करता हूं। और मैं गुरुद्रोही नहीं, और मैं अकृतज्ञ भी नहीं। अकृतज्ञ होता तो मैं भला रुक सकता था, तुम्हारे सामने आ गया। और गुरुद्रोही तो किसी हालत में नहीं। तो गोपिया मुख देखने लगी और बोली तब आप कौन हैं? तो फिर मैंने तुम्हारा प्रेम बढ़ाने के लिए मैं विषय अंतर्ध्यान हो गया, क्योंकि कोई वस्तु मिल जाए चिंतामणि हाथ में और आकर के फिर वो कहीं खो जाए तो आदमी सब समय उसी की चिंता करता है। वैसे मैं विषय तुम्हारे विषय, मैं तुम्हारा प्रेमी हूं, तुम हमारी प्रियसी हो, हमारे प्रति ईर्ष्या मत करना। तुम्हारा प्रेम और बढ़ाने के लिए मैंने ऐसा किया, एवं मदत तो जित लोक वेद स्वानांग ही वो मई पित अबला इत्यादि सब। इस प्रकार से तब अंत में कृष्ण ने कहा न पारे हम निर्बद्ध सब, मैं तुम्हारा करोड़ों वर्ष की आयु देवताओं की आयु ब्रह्मा की आयु पा करके भी तुम्हारे ऋण से मैं उऋण नहीं हो सकता। तुम अपने कृपा करके अपने ही आप अपना हमारा ऋण उतार सकती हो। जब ऐसा कहा तो गोपियों ने कहा, गोपियां प्रसन्न हो गई, अंत में हम लोगों को ही श्रेय दे रहे हैं, तब वो साक्षात प्रसन्न हो गई। आप ऋण मुक्त हैं क्योंकि हमारी ऋणता आपने स्वीकार की। इसके बाद में फिर राश हुआ और राश के बाद में फिर एक ब्रह्मा का एक दिन इसी प्रकार से गया। तत्पश्चात फिर उद्धव जी को कृष्ण ने भेजा गुरुकुल से आकर, और भेजने के बाद में किस लिए भेजा, उद्धव जी कुछ पाठ पढ़ करके आएंगे तब उनसे प्रेमालाप करके अपना दुख हल्का कर लूंगा। भेजा, उद्धव गए प्रेम की पाठशाला में, पढ़ नहीं सके, केवल भवन देखा, प्रिंसिपल और सबको देखा, और उनकी महिमा देखा नंद बाबा इत्यादि का, और गोपियों की जो महिमा देखी, कैसी महिमा देखी, जैसे हिमालय एवरेस्ट के नीचे कोई खड़ा हो जाए टोपी लगा करके तो टोपी गिर जाए ऐसे। किंतु डर गए, गोपियों का इतना प्रेम और इतनी दुखी है ये, कहीं हम भी ना दुखी हो जाएं, डर गए और लौट गए कृष्ण के पास। बोले जी मैं उनको बुलाने के लिए जाता हूं, चले गए। तो ये उद्धव संदेश और उसमें भ्रमर गीत बहुत ही श्रीमद् भागवत का एक मणि है, रसपंच अध्याय, पांच प्राण हैं, और उन पंच प्राणों में भी भ्रमर गीत और भी गोपी गीत है। संक्षेप में तुम बोलो तो कुछ,
कौन सा
उद्धव संदेश का अंतिम भाग? हाँ, किंतु समय हो गया, थक गए।
ट्रांसलेशन
कर दो, शाम को हो फिर दिखा।
शाम को ना, दो बजे सब जाएंगे।
हाँ तो जाए,
जाए,
जाए। अंततः एक श्लोक तो बोलो, वंदे नंद ब्रज स्त्री नाम बोलो। You can speak.
सर्वप्रथम अस्मदीय गुरुपाद पद्मों में असंख्य कोटि धन्यवाद प्रणत ज्ञापन करता हूँ। तदनंतर उपस्थित पूजनीय
संन्यासी
समस्त वैष्णव वृंद, समस्त सज्जनों, माताएं बहनों, सभी को मेरा प्रणाम निवेदन। अभी अभी गुरु जी की आज्ञा हुई है, से उद्धव संदेश में ब्रज गोपियां जब कृष्ण के विरह में उन्माद हुई और विशेष रूप से मुक्त हो गए, विस्मित हो गए, जिसमें वृषभानंद ने श्री राधा जी ने कहा, क्या श्याम सुंदर अभी मथुरापुरी में है? क्या वे मथुरापुरी में है? यदि मथुरापुरी में होंगे तो अवश्य लौट के आएंगे, अन्यथा यदि कहीं दूर निकल गए हो तो लौटने की और कोई संभावना नहीं दिखती। क्या वे कभी अपने पिता माता के लिए स्मरण करते हैं, अपने सखाओं के लिए, गायों के लिए, अपने घर के लिए, अपने द्वारा लगाए हुए वृक्ष पौधे आदि, क्या उनके लिए कभी उनको स्मरण होता है? इसी प्रकार एक एक बात को कहते हुए राधा जी विकल सुनने लगी। उस समय अपने दिलता के बस दिलता में ही राधा जी यही कहती है, क्या कभी मथुरापुरी में कोई भी मथुरा की नागरिया जब सेवा करती है, उस समय क्या कभी उल्टे रूप से भी हम लोगों का नाम लेते हैं? बचपन में गोपियां सेवा करती थी और प्रयास करती थी, पर इतनी परिपाटी जानती नहीं, इतनी कलाएं उनके अंदर में नहीं थी, फिर भी कुछ करती थी, तो कभी क्या ऐसे स्मरण करते थी? या कभी जब सारी दुनिया में देख लेंगे वही ऐसे गोपियां जैसे प्रेम करने वाली, सेवा करने वाली, उनकी जैसी कलाएं, उनकी जैसी परिपाटियां और कहीं नहीं मिला, तब उस समय उनका मन नहीं भरेगा, तब वे कभी लौट करके आएंगे? क्या कभी आएंगे लौट कर? और भुजम अगुरु मूर्छन दास्य तदानु धारण करेंगे, कभी उनका दर्श मिलेगा? इस प्रकार होकर हो जाती। ऐसे समय में सब ब्रज गोपियां रोने लगी, कहा कि उद्धव यदि कुछ संदेश लाया हो तो सुना दो, तुम्हारे प्रभु ने कुछ संदेश सुनाया। उस समय उद्धव जी नमन करने लगे, ऐसा महान प्रेम कृष्ण ने अनुग्रह करके भेजा, इस प्रेम को देखने के लिए, समझने के लिए आज हमारा अहोभाग्य है। परंतु उनका जो संदेश, उस संदेश वचन से तो कभी भी आपकी सांत्वना नहीं हो सकती, मैं त्याग तो हूँ फिर भी जो कुछ कहा है उसी बात को कहा। गोपियां उन बातों को न तो स्वीकार किए, कहा कि जाओ उद्धव ब्रह्म ज्ञान रूपी नीम रस वो मथुरा पुरी में ले जाओ, यहाँ नहीं चाहिए। हम विरह में सैकड़ों जाम तक होती रहेगी और कृष्ण के लिए व्याकुल होते रहेंगे, झटपटाते रहेंगे, मरते रहेंगे, हमें कोई चिंता नहीं है, वही अच्छा है। इस प्रकार विरह में रोती हुई मथुरा की ओर देखती हुई ब्रज गोपियां विकल होकर के रोने लगी, हे रमणा, हे ब्रजना, हे रमणा, हे ब्रजना भारतीनाथ मम नमुत्थ, हे रमणा, हे राधाना, हे ब्रज गोपियों की अंतर दाता, हे ब्रजजनों के अंत को दूर करने वाले, यह ब्रज भूमि तुम्हारे विरह में विरह रूपी समुद्र में डूब रही हो, ऐसे समय में यदि तुम स्वयं आकर के बचाओ तो संभव है। इस प्रकार ब्रज गोपियां रोती हैं बिलख, ऐसे समय में उद्धव जी उन्हें लेकर के गए नंद भवन में और सांत्वना देने का प्रयास किया। कोई महीने तक ब्रज में रहे, उनसे कथाएं निकाली कि आप कुछ कथा सुनाओ, कौन कौन स्थान में कृष्ण ने लाए कि जिससे उनको सांत्वना मिले। इस प्रकार उद्धव जी ब्रज भूमि में सर्वत्र भ्रमण किया। राधा जी के जो दिव्य वास विरह प्रेमय प्रलाप वचन ये सब सुन करके उद्धव जी स्वयं प्रार्थना करने लगे, एतावराम स्वरूप दो गोपवत्सल, इस ब्रज भूमि में संसार में यदि जन्म सार्थक है तो एकमात्र ब्रज गोपियों का सार्थक है, क्योंकि निखिल आत्मा गोविंद तो सबके हृदय में है, सबके अंतर्यामी है, कितने लोगों को भाव है, परंतु ब्रज गोपियों का प्रेम स्नेह मान प्रणय राग उल्लास भाव महाभाव रूढ़ अधिरूढ़ महाभाव दिव्य भाव में गोपियां डूबी हुई है। जिस भाव को ब्रह्मांड से देख करके हम सभी तक बच्चा करते हैं कि ये अभिलाषा करते हैं उसका एक कण भी मिल जाए, पर संभव नहीं। किम ब्रह्म जन्म भी अनंत कथा रस, कृष्ण कथा रस के बिना, इस भाव के कारण प्राप्ति के बिना जीवन तो बेहतर है केवल अहंकार अभिमान लेकर के इस मनुष्य जीवन को पा करके क्या लाभ, यदि कृष्ण भक्ति रस में डूबाए सरसिद्ध सरस नहीं बना। उस समय कहते हैं
आशा मोह करो,
इसलिए उद्धव जी ने प्रार्थना की इस ब्रज भूमि में कहीं ब्रज गोपियां जो महाभावती हैं उन गोपियों के चरण हमें मिल जाए, ब्रज में तिलक गुण मलता हो करके मेरा जन्म हो जाए। इसी तरह से वे प्रार्थना करते हुए अंत में कहते हैं न बंदे नंद ब्रज श्री राम पाद रेणुम अभिश्रत जातां हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवनं प्रियम। उन नंद ब्रज की जो गोपियां हैं उन गोपियों के चरण रेणु की मैं सदैव वंदना करता हूँ, जो कि जीवन में एक भूल कर भी हमें प्राप्त हो, जिनकी पवित्र है कथाएं संसार को पावन करती है, ऐसे पावन कथाएं हम सबके हृदय में स्फुरित हो, स्फूर्ति प्राप्त हो। इस प्रकार उन्होंने प्रार्थना की है, आज वही प्रार्थना करते हैं कि गुरु वैष्णवों की अहित की करुणा से हम सबके हृदय में कृष्ण भक्ति रस के एक कण भी जागृत हो और उनकी लीला कथाएं हृदय में स्फूर्ति हो। इन्हीं कथा
In two minutes. One, what he told in 2 minutes.
पंडा जी, दोपहर में अपने परिवार के साथ में सब लोग आएंगे। कल यहाँ पर आए थे कल यहाँ पर गए थे
The Gopi said, "Hey Krishna, your voice, your eyes are like a lotus, and your speech is very sweet, sweeter than nectar. Therefore, your speech has so many different meanings. So when we remember the sweetness of your speech and the cleverness of your speech, our intelligence becomes bewildered. Therefore, hey Pushkarachana, we are your servants." And the Gopis remembered how Krishna's words had two meanings. When Krishna called his food, and all the Gopis came to see Krishna, that time Krishna swagatam vamahabhamo, and those verses have many meanings. In one way, Krishna is saying to the Gopis, "Oh Gopis, why you came here in the dead of night? This is not good. This forest is very dangerous. Therefore, you should return to your husbands. You should immediately go back." But then Krishna, another way Krishna said, "I never said to go back. I said you should not go back because I think you have not come here to see the forest. You have not come here to see the moon. You have come here to be with me. And I am not a brahmachari. And you are a very splendid waist, beautiful girl. Therefore, you should stay here with me." Also, this forest is not dark and dangerous because it's filled with animals like rabbits and deer. Therefore, you should stay here with me. Therefore, remembering all this, then the gopis begged, "Krishna, you should give us the nectar of your lips." Then tabakatamritam tapta jivanam kavimedisam kalmasapanam shavanamangalam srimanatham purvaganante buridevana. And this also has two meanings. In one way, one sense, the gopis are praying to Krishna. And another sense, like in Chandrabhi's group, they are like little praying to Krishna, a little submissive. But Radharani's group, if you think like that, then that verse will have many meanings. The common way that people take this verse, tavakatamrita, "Hey Krishna, your katha is like nectar."
Go on. In the last part he told.
Apni bola, kuch.
What Gurudev told.
Then, so Gurudev said now, hearing these words of the gopis have two words, therefore hearing the sweetness of their voice and hearing the enthusiasm of the gopis to meet Krishna, therefore, Krishna could not hide himself anymore, and he immediately appeared there. Tesham avaruchshori smayaman mukhotitam pitam dragasravi shakshat mammatavan mata, holding his pitamba around his neck in a very forgiving pose, as if he had done some offense. Krishna begged forgiveness from the gopis, and the different gopis were reciprocating in different ways. Some were catching his hand, some were taking the tumble from his mouth, and one gopi from a distance were giving him very crooked glances. Therefore, the gopis asked, "Which type are you? Which type of lover are you? There are some who only give affection if you give affection. And there are some, whether you reciprocate with them or not, that person will still love you. Which one are you?" Krishna answered, "I'm not the first type, because the first type is like a businessman. And I'm also not like the second type. That second type is also of four types. The first is like..."
No.
The third type.
No, but this is there are four types.
No.
Which
what
one are you?
Second type is the father and the mother.
Like father and
mother.
Second is the third type.
Father, mother, guru. And then third. Third is of four kinds.
Then Krishna said, "I am not like a parent or a guru." Then Krishna said to the gopis, "You are like that." Then Krishna said, "I am not Atmaram or Aptikam also. Because if I have Aptikam, have all my desires fulfilled, then why I called you in the middle of the night? And Atmaram, I am Atmaram because I am staying in the hearts of all. And also because Radharani is my Atma. Therefore, I am definitely not Guru Jogi also. Otherwise, why appear here again? And I am not Ajitagra because I came to you." Therefore, Krishna said, "Therefore, I appeared here. I disappeared from you for one reason, to increase your prema." Just like a person who loses a chintamani. If he has a chintamani, then he loses it. How much he becomes absorbed in thinking, how can I reattain it? Therefore, gopis, please do not be angry with me. And Krishna prayed, "Nafariham nidavidu samyujam." O gopis, I am indebted to you. I am your servant. Even if I live for a lifespan as long as Brahma, I could not repay your spotless service to me. Please be happy by your own greatness. Hearing this, the gopis became happy and rasa was performed. For how long? For one night of Lord Brahma. After that, Krishna Balaram went to Gurukul in Ujjain. And after they returned, Krishna sent Uddhava to Vrindavan. Why? That Krishna could have someone to speak with upon his return about the glories of the gopis, then his suffering would be diminished. But Uddhava came to Vrindavan, and seeing the Himalayan-like prem of the gopis, he became astonished, and he could not gain entrance to the university of prem of the gopis. Therefore, these five chapters of the Bhagavatam are like the five life forces of a body of the Bhagavatam. But amongst these, the Brahma Gita is the jewel. So after that, Radharani,
Uddhava began to pray. Bande Nanda
Brajashtinam. Then Uddhava saw the wealth of the gopis. Uddhava became astonished, and Uddhava prayed asamaho chanadvanenu jusamaham sham. Oh, I hope at my next birth I can take birth as a tree, a medicinal bush, or a piece of grass. So when the gopis go to meet, they can step upon my head and they can perform abhishek. Then I can get this prema.
After some time, you can call all and you can speak what they have to. Oh, Kirtan.
Hare Krishna. Short announcements. Today at 2 o'clock, 6 buses are leaving to Mathura and Vrindavan. All the devotees who have been staying in Dharmashalas, they are requested to leave their room before lunch. Devotees who stayed in guest house or hotel, they are requested to pay their bill. And the devotees who stayed in our guest house, they should deliver the keys of their rooms to either myself or Brinda Devi. The devotees who like to attend the festival in Delhi on the 20th November, there will be a bus leaving from Vrindavan at 6 o'clock in the morning. A bus will be leaving from Mathura at 6 o'clock in the morning. And those of you who are still here because of the seminar, which will be held on the 17th, 18th, and 19th, they can go by bus at 6 o'clock in the morning from Govardhan. All of you who are still here, you are invited to attend the seminar, which will start on the 17th. And yesterday, there was a little incident. Devotees were throwing bags out of the windows of the buses, and one bag got lost. It's a canvas bag with a mini recorder inside. Whoever found it, please bring it to myself or Shiva Manubhima. Those of you who have made pictures, videos, recordings, please be so kind and provide it to our Shiva Dandi Maharas. They want to collect all these recordings and make a very beautiful publication. Also, one more thing, some devotees have arrived late and they were not able to register properly. We request you, make your Parikram Vrata complete and give your registration fee to either Tilakras Prabhu. Can you stand up, Tilakras Prabhu? Are you there behind the book table? You can just go to the book table and pay your fee. And some of you have made a shop outside the temple. Even during Gurudev's classes, the shop was going on selling things. On behalf of the management, I request you to at least donate 50% of your profit to Srila Gurudev.
Hare Krishna. Delhi se jo log Bangal mein jayenge, un logon ka naam announce kar raha hu. वो लोग अपने समस्त सामान साथ में लेते ही दिल्ली जाएंगे, क्योंकि दिल्ली से इधर वापस नहीं आना है. जो लोग बांग्ला भाषा में जाएंगे, श्रीमद दीप्त महाराज हरिदास आदि के साथ उनका मैं अनुरोध कर रहा हूँ.